शास्त्र की महात्माओं की सेतों की और ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। केवल कमी है अपने ऊपर आपकी कृपा की, और इनकी कृपा तो अपार है। यदि उनकी कृपा की तरफ हम ध्यान दें तो उसकी कोई सीमा नहीं। शास्त्रों के सिद्धांत, शास्त्रों के तत्व को, रहस्य को जो हम नहीं समझ रहे हैं, इसका कारण कि शास्त्रों के ऊपर हमें सर्वमान्य विश्वास नहीं। उस जीव पुरुषों का विश्वास है जिनकी शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्रों का तत्व है वो पुरुष समझते, वही उसे दया से ना बता सकते हैं। कहीं पर शास्त्र की बात अपने समझ में नहीं आई, गीता रामायण भागवत आदि किसी नहीं लिखे, तो अपनी समझ की कमी समझ लेनी चाहिए। शास्त्र के ऊपर दोष नहीं लगे, दो दृष्टि नहीं हुए वो उत्पन्न है, और यदि हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारी समझ की गलती है, हम समझे ही इसके तत्व है उसको समझ, तो इतनी श्रद्धा से भी काम चल सकते, उसको शास्त्र का जो तत्व है उसको अनुभव सकते। इसी प्रकार से थी तीर्थों के विषय में, भगवान के विषय में, भगवान की सब पर पूर्ण दया है, और भगवान की दया तो सब की दया, जहां पर कृपा नाम की हुई और जहां पर कृपा करे सब, जिसमें भगवान की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा कर, आपके देखने को आपके साथ के मां जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, किंतु आपको यह समझना चाहिए कि अत्याचार करने वाला अत्याचारी भगवान का भेजा हुआ, समझो कि भगवान का ही पुरुष है, उसमें भगवान की दया भरी हुई है, जिसे ध्रुव और प्रहलाद ने उस दया का तत्व समझ ना कहते हैं। कितना अत्याचार प्रहलाद पर किया, ये अमरों की दृष्टि की, प्रहलाद की दृष्टि के बीच के वहां अत्याचार नहीं था। प्रहलाद तो समझते थे कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है, संदेह मैं ने जो अत्याचार किया प्रहलाद ने समझा कि ये प्रभु की कृपा है, प्रहलाद को आग में बैठा दिया, प्रहलाद तो प्रभु की कृपा समझते नहीं। इतना कृष्ण कहता है कि प्रहलाद ये आग तुम्हारे को क्यों जला रही है, कि मुझको तो ये प्रभु का रूप दिखे हमें कैसे जला, उसकी तो प्रभु के समान मुझको तो प्रतीत हो रही, माता कयादु जो है विश्व पिलाने के वास्ते आई वो पिला नहीं सकती है, किंतु प्रहलाद उसके हाथ में विष छीन करके पी जाते हैं, इसलिए कि माँ जो है पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो माँ को डर होगा, तो पिता का जो आदेश है देश है उसमें उनको मदद करनी चाहिए, माँ को भी मदद करनी चाहिए, वो तो समझता है कि हमारा तो कुछ होता ही नहीं, वो विश्वगत हो जाता है। गरल सुंदर श्याम जो है वो अमृत हो जाता है भगवान के भक्तों के प्रभाव से, जिसने पान कर लिए तो अमृत हो जाता है, जो बैरी है बैर करने वाले वो भी ये सुमित्र बन जाए, वो भगवान की भक्ति रूपी जो मई है उसके बिना असली जो सुख है नहीं मिलते। आखिर के गीत के मां दुष्ट के सिद्ध मारा गया और भगवान अपने प्रहलाद को कहते हैं कि तू वरदान मां वरदान मां, बार बार कहने पर भी प्रहलाद कुछ नहीं हो, मैं आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में आप मुझको वरदान दे हो, तो ये भक्ति क्या, वो तो एक जो पार हुआ तो मैं बढ़िया नहीं हूं जो आपसे कुछ मांगूंगी। बनिया जो है वो रुपया लेता है और बदले में सौदा देता है, तो मैं आपकी भक्ति करूं और बदले के बीच के मन वरदान लू, तो भगवान कहते हैं मेरे संतोष के लिए कछु मान। महाराज आप बार बार कहते हो मान, तो ऐसा मुझको अनुमान होता है कि शायद मेरे भीतर में कहीं काम ना हुए, नहीं तो आप क्यों कहते। यदि मांगने की मेरे भीतर में कोई इच्छा ही नहीं होती वो तो आपको कृपज होना, तो आप मुझको कहते क्यों तो मन, तो हो सके मेरी मेरे भीतर में कोई कामना हो और उसका मुझको मालूम नहीं हो, तो बहुत अच्छी बात है आप मुझको यही वरदान दो कि मेरे में कोई कामना छिपी हुई है तो वो भी नष्ट, ये वरदान बचा। फिर भी भगवान आग्रह करते हैं, अच्छा प्रभु मैंने सुना है कि आपकी भक्ति के बीच के मां कोई बाधा डालता है उसकी दुर्गति होती है, तो प्रभु इस विषय में मेरे पिता ने जो डाला कभी कभी डालते हुए दूर पड़ा नहीं, क्योंकि पिता जी ने मुझे डाला, तो मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूँ यदि आप प्रदान देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार करो, इसका कल्याण कर दो, तो बच्चों की मांग दे दो ऐसी मांग हो, उसको मैं तुमने नहीं देखा है किंतु एक प्रकार से थी लोगों की सुनी है जो भगवान ने विशेष आग्रह ध्रुव के लिए किया है, तो ध्रुव ने ये बात कही कि महाराज आप यदि मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माता सुरेश जिसने मुझको ताना मारा था, अरे जिस ताने को सुन करके और मैं मन को चलाया और आपकी भक्ति में लग गया और आपकी प्राप्ति हुई, तो आपकी प्राप्ति का श्रेय है तो मेरी उस माँ को है जो मुझको बोल मारा था, इसलिए आप उसका कल्याण कर दो उसका उद्धार कर दो, तो कैसी मांग, तो भगवान की मांग तो ऐसी हो जाती प्रकट कर गया, पर दूसरा उसने प्रकट में बात आ गई, तो भगवान की जो दया है वो अपार है, वो भगत को हरेक लीला में दया दिखती है, हरेक भगवान की जो लीला है उसमें दया दिखती है, और जो कुछ अनिच्छा से परीक्षा से हो रहा है ये सब भगवान की लीला हो रही है, और इस लीला को देख देख के भक्त खुश होता है,
दूल्हा तो देख देख के भरपूर होता है, बोले बाप रे। तो कोई भी हमारे मन की कितना भी विपरीत क्यों नहीं करे, उसको लीला का रूप देना चाहिए और देख देख करके खुश होना। जैसे शास्त्रों के वहां कोई विपरीत बात देखने में आवे और उसमें हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये हम समझेंगे, तो कहीं ऐसा भी समझो कि आपने चित्र आ जाता है श्याम ने कि उसमें अपने वो बात समझ में नहीं आती, तो प्रभु की लीला सब समझ में नहीं आती। मैं समझ में आवे तो मैं सही, किंतु मांगना से भगवान की लीला, सभी लीला समझ में आ जावे तो फिर बात की जाए। जो भी कुछ होता है परीक्षा से अनिच्छा से देविच्छा से आदि से प्राप्त हुए, सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय, भगवान की दया इतना भी, भगवान की दया के तत्व रहस्य को समझे, इतनी दया और इतना इतनी उसकी दया है कि जिसकी सीमा नहीं, हमारी बुद्धि में आ भी नहीं सकती, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार भी हम उसकी दया अपने पर मान ले रहे, तो इतना आनंद हो रहा है, इतनी शांति मिले कि हम शायद हंसते हंसते हो रहे हैं। मनुष्य भगवान की दया के ऊपर दृष्टि डालता है और जो आगे बढ़ता है, जो साथ साथ के वह आमोद प्रमोद प्रसन्नता शांति और आनंद इतने बढ़ते जाते हैं जिसकी सीमा नहीं, और गैर का पश्चाताप भी होता है कि देखो कितनी भगवान की दया सदा से रही हुई है और मैं नहीं समझता था इससे, इसलिए मैं वंचित रहा, इसके लाभ से वंचित रहा। ऐसे महापुरुषों महापुरुषों की जो दया है, महापुरुष जो मिलते हैं उसमें प्रधान हेतु समझो कि ईश्वर की दया है, महापुरुषों की दया है, महापुरुषों की जो दया है वो ईश्वर की दया के अंतर्गत ही है। जहां पर कृपा राम की हुई त्या पर कृपा करे सब कुछ, भगवान की कृपा के अंदर ही सब की कृपा, जो शास्त्रों की दया है, महात्माओं की दया है, देशों की दया है, सब की जो दया है ससुर की, भगवान की दया के अंतर्गत। महापुरुष जो मिलते हैं हमारे पूर्व के संचित से या प्रारब्ध से भी मिलते हैं, अच्छे प्रारब्ध से, और हमारा जो भगवान में प्रेम है, श्रद्धा है, प्रेम और श्रद्धा के बल के ऊपर भगवान को प्रेरित होना पड़ता है, फिर महात्माओं की बात ही क्या। तो भगवान की दया ही इसमें मूल हेतु है। भविष्य को जब हनुमान मिले तो भविष्य ने यह बात कही, अब भाव मोर भरोस हनुमान का दिन हरि कृपा न मिले हनुमान, अब मुझको विश्वास है कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं है, तेरा जो मिलना है वो भगवान की कृपा से, पुण्य पुंज दिन मिले संता, संत पुण्य पुण्य पुंज दिन मिले संता, सत्संगति संस्कृति कर अनुता, संस्कृति कर अनुता माने पुण्य जो है इकट्ठी हुई निष्काम कर्म, वो इकट्ठा रहता है सहकाम तो सब देख समाप्त हो जाता है, तो निष्काम जो अपना किया हुआ जो कर्म है, उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, निष्काम भाव से जो की हुई वो उनका पुण्य है, वो कायम रहता है, उसके प्रभाव से थी संत सुन मिलती और संतों के मिलने का फल क्या है, संस्कृति मन संसार में जो जन्मना मरना है उसका अंत हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। भगवान की अमूल रूप रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई छोर नहीं। इस बात को हम जब ख्याल करें तो उतरों पर इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी सीमा नहीं। तो इसको हम देखते हैं तो समझो कि आस्ते आस्ते लाभ उठाएं तो अधिक से अधिक इसमें 24 घंटा लगना चाहिए। एक रात दिन जो हमारे शास्त्र में बताया है कि सरयू के मन जो 10 वर्ष लगते थे, आज कलयुग के बीच में एक दिन वो काम हो सके और आते हो जावे तो एक दिन कैसे बीते, इसको तो समझो कि एक घंटा में वो काम हो जाए। तो उत्तरों तो एक प्रकार से क्षण के बीच के वहां समझो कि अपने वृद्धि होए तो उसके हृदय के वहां लहरा उठने लगे, जैसे समुद्र के वहां जल की लहरा उठती है। हृदय के बीच के वहां समझो कि भगवत भाव की जागृति होने और भगवान के दया और प्रेम को देख देख करके उन्हें सुमुख दे जा, जैसे भगवान की दया है ऐसे भगवान का प्रेम। भोगतारण ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीधन सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये पांचवी अध्याय का 29 श्लोक है, 29 का श्लोक है। इसके तत्व और रहस्य को हम समझ जाए तो समझने के साथ ही हमारा कल्याण हो सके। इसके लिए कोई जन्म का काम नहीं, घंटा दो घंटा का काम नहीं, मिनट दो मिनट का भी काम नहीं। भगवान की घोषणा है कि ज्ञातवा मां शांति मृच्छति, मुझको जान करके अरे शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति माने परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति उन्हें पर जो शांति मिलती है वो शांति यहां है। तीन बात कही, मुझको ये गोत्रों का भूता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब भूतों का सूर्य जान करके मुझे शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो तीन बात है, तीनों को जानने से शांति मिलती है, तीनों में एक को जानने से, बोलो तीनों में एक को जानने से परम शांति मिल जाती है। फिर तीनों को जानने से शांति मिले इसमें तो कहना ही क्या है। ये भगवान की समझू की इसमें अनंत शरण है, अनंत भक्ति है, इसमें अनंत प्रेम तो है, किंतु अनंत भक्ति अनंत प्रेम अनंत शरण हृदय के मसंद होती है, हृदय में भाव होता है, विश्वास होता है, तब एक प्रकार से उसको इसका दिग्दर्शन होता है। भाव क्या, जब और तत्वों का भोगता मुझको जान कर शांति मिलती है, जब और तत्वों का भोगता मुझको जान कर शांति मिलती है, ये तो शब्दों का अर्थ है। भाव यह है कि भगवान सब में विराजमान है, भगवान युग और तत्वों का भोगता है। संसार में जितने प्रकार के जो जग बतलाए हैं तो वहां भगवान उसके भोगता है। हम नित्य जो तंत्र महादेव करते हैं तो भगवान उसके भोगता है। मनुष्य के बीच के न हम अतिथि को भोजन देते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे घर पर आया हुआ अतिथि है भगवान ने, भगवान के अतिथि के रूप में आए हैं। माँ जी जो हो, पिति देव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, ऐसी उपनिषद के बीच के मां शिष्य को आदेश देकर के स्नातक बनाकर के आचार्य उसको अपने घर पर भेज रहे हैं। और ये आदेश दिया है कि तुम अतिथियों को साक्षात नारायण समझ, साक्षात देव समझ, ईश्वर समझ, माता पिता को भी तुम ईश्वर के तुल्य समझ। इसी प्रकार से थी अग्नि में हम आहुति डालते हैं, ये देव एक है, तो ये समझना थी कि भगवान ही अग्नि के रूप में हमारी आहुति भक्षण करेंगे। हम पितरों के लिए तिल दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो ये भाव करना चाहिए कि सुन भगवान ही हमारे पितृ बन करके ये सब ले रहे। हम ऋषि जप कर रहे हैं, हम संध्या गायत्री कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे ऋषि बहुत खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तो समझना चाहिए भगवान ही ऋषियों के रूप में हमको आशीर्वाद दे। जिसमें कीट पतंग पशु पक्षी आदि सब जानवर, वो भूतिये उसको गर्विष्य भी कहते हैं, और वो जग कर देते हैं सब प्राणियों को देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही वहाँ उसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उस रूप में भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। तो इसकी कसौटी आपको बतलाई जाती है, जैसे अपने घर के आने पर भगवान को भोजन कराने से जो हमारे को प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता उस भक्त में होनी चाहिए यदि उसमें हमारा भगवत भाव। यदि भगवत भाव नहीं है तो वो प्रसन्नता नहीं होगी, और उसमें जितनी कमी है उतनी प्रसन्नता कम होगी। तो साक्षात भगवान ही तो है। भगवान ने गीता में जीवन दिला यह बात के लिए कि आत्मा बुरा के सर्वभूता है, फिर बुरा के सबके हृदय के मन सब की आत्मा है, मतलब समस्ती ज्ञान उनको हो रही है, सबके हृदय में स्थित हूँ। समस्ती ज्ञान और सुंदर की सर्व विफलता निर्णय इसका नाम वो ऐसे नहीं है। भगवान कहते सबके हृदय के बीच के मन हूँ, देखा नहीं तो सबके हृदय के मन भगवान है, यही कि मनुष्यों के हृदय में हूँ। प्राणी मात्र के हृदय के मां भगवान कहते हैं, तो प्राणी मात्र के हृदय के जिसके मां भगवान का दर्शन करना। भगवान कहते हैं कि योना प्रस्तुति सर्वत्र है, जो सर्वत्र मुझको देखे उसका फल क्या होता है कि उससे वह कभी अलग नहीं होता, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो इस प्रकार समझने का फल है, बुद्धि से देखना है, बुद्धि से समझना है, बुद्धि से जो अनुभव करना है, इसे कसौटी से कैसे जाएंगे, तो ये इसमें हम पार उतर जाएंगे तो भगवान हमारे से चुप नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उससे कभी अलग नहीं रह सकता, तो ये भाव होना चाहिए। ये इसे का भाव है कि भगवान यह तपसम, सबका मतलब है इंद्रिया जो है मन बुद्धि है, इंद्रिया और मन इनका जो संयम है वो तप है। अपने धर्म के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए कष्ट है ना, उसका नाम तप है। तो इंद्रिया और मन इनका जो संयम है, और इस प्रकार का जो हम तप करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उसके भी भोक्ता भगवान है, सबके भोक्ता भगवान, भगवान के स्वरूप कोई भोक्ता नहीं। तो ऐसा समझ करके हम समझो कि यज्ञ दान तप कर करके भगवान के भोग लगावे, भगवान के समर्पण कर दे। यज करोसी यद स्नासी यज्ञ होशी ददासी यद, ये तप से कौन होती है कौन के जो करता है काम शास्त्र रूप से कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, जो तू भोजन करता है या जग करता है, दान देता है, तब करता है, वो सब तू मेरे समर्पण कर दे कि मैंने मेरे उद्देश्य ही कर। आगे जाकर के फिर वो करता भी नहीं रहता, उसमें सब बातें होती रहती है भगवान की कृपा से। जैसे कठपुतली जैसे सुंदर धारण जाता है वैसे वो नाचती है, कठपुतली अपने से नहीं नाचती, ऐसे कठपुतली तो जड़ और चेतन है। चेतन होकर के जड़ की मापक है और क्रिया करे तो वो एक प्रकार से कर्मभी बन गया भगवान का। फिर तो भगवान एक प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार मैं जाऊंगी कृष्ण की सेवा। इसलिए जगत की वस्तु में हमारे पास भगवान की सेवा के लिए रहे, सेवा के लिए हम उनमें ममता भी करें। भगवान के नाते नाते नेह राम सुनिवेश सूद सुषेद जहानी अंदर का आंख जरूरत होते हैं बहुतक तो कहा। जी महाराज कहते हैं कि जितने भी संसार के नाते हैं और जितने भी स्नेह के संबंध हैं उन संबंधों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन संबंधों को राम के संबंध से मान लिया जाए तो जो सीधा नाता था वो टूट गया। नाता उनसे जुड़ा रहा राम के नाते, बंदो सबे राम के नाते, रातो हुए राम सुमनिय स्मृति सुसेव जहान। जितने भी स्मृत हैं और जितने भी अच्छी प्रकार से सेवा करने योग्य है, माता पिता भाई गुरु बड़े और पालनी है, जितने भी हमारे हैं जितने हमारे मित्र बंधु बांधव हैं उन सब का संबंध हमारा होना चाहिए भगवान के संबंध को लेकर। ये भगवान की दी हुई चीज हमारी सेवा में है, हम इसकी सेवा करने के लिए यहाँ रखे गए हैं और ये वस्तुएं भगवान की। तो इस दृष्टि से अगर हम घर को संभालें, घर के लोगों को संभालें, पालन करें, पोषण करें और इस दृष्टि से अगर ममता करें तब आपत्ति नहीं है। तो सीधी ममता सीधी आसक्ति संसार के वस्तुओं में भी हो और भगवान भी प्राप्त हो जाए ये आशा ही करनी चाहिए। ये जो प्रश्नकर्ता महोदय का ये प्रश्न है इसका उत्तर उनकी भाषा में तो मेरा सजन है। वो जो कहते हैं कि संसार के वस्तुओं में हमारी ममता बनी रहे, संसार की वस्तुओं में हमारी आसक्ति बनी रहे, इनसे हमको सुख मिलता रहे, इनसे हमको प्रेम मिलता रहे और हमको भगवान की ममता भगवान का प्रेम भी साथ साथ प्राप्त हो जाए, इसका क्या उपाय है? तो इसका तो उपाय कोई है नहीं, हमारी समय में तो नहीं है, हमारे में इसका उपाय नहीं है। हाँ ये वस्तुएं रह सकती है, इन वस्तुओं की सेवा आप कर सकते हैं, इनकी संभाल आप कर सकते हैं, इनकी देखरेख आप कर सकते हैं, इनको आप प्रेम दान भी अपना दे सकते हैं।